आयू मीटिंग के लिए सेलिब्रेशंस पहुंच गई थी। आरव को चिढ़ाने के लिए आयू ने उसी का डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहना था। पूरी मीटिंग में वो बिल्कुल प्रोफेशनली बिहेव कर रही थी और ऐसे दिखा रही थी जैसे वो उन्हें जानती तक नहीं है। लेकिन मीटिंग में जब ब्रेक आया तो आरव का गुस्सा उसके बस के बाहर हो गया था। उसे आयू से बात करनी थी जबकि वो उसके करीब तक आने के लिए तैयार नहीं थी। आरव ने आयू का हाथ पकड़ा और उसे सीधा लिफ्ट में ले गया था। वहां जाकर उसने लिफ्ट के उल्टे सीधे बटन दबा दिए ताकि लिफ्ट अपना कंट्रोल खो दे और कोई उसे रोक ना पाए। जब लिफ्ट चलने लगी तब आयू ने आरव की तरफ घूरकर देखा और कहा, लगता है जो थोड़ी बहुत समझ बची थी वो भी खो दी है। दिमाग खराब है तुम्हारा जो लिफ्ट के साथ खेल रही हो। अगर ये खराब हो गई तो हम यहीं पर फंसकर रह जाएंगे। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हुआ है जो उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो। रही बात लिफ्ट खराब होने की, तो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे साथ यहां फंसकर रहना भी मंजूर है, आरव ने बेपरवाही से कहा। बोलो क्या कहना है, मैं सुन रही हूं, आयू ने जवाब दिया। वो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे आरव को समय देकर उस पर कितना बड़ा एहसान कर रही हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये तुमसे छुपा हुआ नहीं है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें सब पता है फिर भी तुम अनजान बनने का दिखावा कर रही हो। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। लड़ाई तो एक घर में रहकर भी हो सकती है, तो इस तरह दूर भागने की क्या जरूरत है, मेरे साथ चलो, आरव ने सीधे सीधे कहा। आयू कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई थी और आरव को यही लगा कि वो अब इमोशनली कमजोर हो रही है। आरव अपने कदम आयू की तरफ बढ़ाने लगा, तभी आयू कुछ कदम पीछे हटकर उसे हाथ से रोकते हुए बोली, ये नहीं हो सकता है और अपनी जिद छोड़ो। लिफ्ट रुकते ही हम मीटिंग वापस प्रोफेशनल तरीके से शुरू करेंगे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आयू लिफ्ट के बटन की तरफ बढ़ने लगी ताकि लिफ्ट को स्टेबल करने की कोशिश कर सके और साथ ही हेल्प के लिए इमरजेंसी कॉल कर सके, लेकिन आरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, आरव ने आयू की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें अपने प्यार का एहसास तब क्यों नहीं हुआ जब मेरे साथ रात बिताने के बाद तुम अगले दिन मुझ पर सवाल उठा रहे थे? तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है आरव, बिना विश्वास के कोई रिश्ता नहीं टिकता है। अगर मैं तुम्हारे साथ आ भी गई तो तुम फिर से वही करोगे। मंथन तुम्हारे ऑफिस में काम करता है, तुमने उसे काम से क्यों नहीं निकाला? और शक करने के लिए मैं ईजी टारगेट लगी तो सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया, आयू ने दांत पीसते हुए कहा। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई थी और मैं इसे सुधारने के लिए भी तैयार हूँ। उस दिन तुम गलत नहीं थी और सारी गलती मंथन की थी। तुमने खुद को एक्सप्लेन नहीं किया और ना ही मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, बस यूं ही छोड़कर चली गई और आज भी जाना चाहती हो। तुम हमेशा यही करती हो, प्रॉब्लम्स को फेस करने के बजाय उससे भागने लगती हो। मैं तुम्हें तुम्हारी कमियां नहीं गिनाना चाहता, बस तुमसे एक मौका चाहता हूँ, आरव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो आयू के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया था और अपना सर झुका लिया था। बस एक बार माफ कर दो, आरव ने भारी आवाज में कहा। उसे इस तरह खुद के सामने झुका हुआ और माफी मांगते देखकर आयू ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थीं और उस पर सच में अपने खुद के जज्बातों पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। अगर आरव ने इतना ही प्यार और अपनी गलती पर इस तरह माफी मांगने की हिम्मत पहले की होती तो शायद आयू को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर वो हमेशा उस पर चिल्लाता रहा। आरव का चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था तो आयू ने जल्दी से दूसरी तरफ देखकर अपने आंसू साफ किए। वो आरव को खड़ा करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसने देखा आरव नीचे गिर गया था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। वहीं बाहर सब लिफ्ट के आगे खड़े हुए थे और लिफ्ट पिछले 10 मिनट से अनस्टेबल हो रही थी। जय जी और रुद्र आरव पर गुस्सा कर रहे थे तो वहीं अयान बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। आरव हमेशा अपनी मनमानी करता है, रुद्र ने जय जी की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा। आप भी उसका साथ देने लगे हैं, आपको दिख नहीं रहा वो आपकी बेटी को हर्ट कर रहा है, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है? लेकिन नहीं, आपको बस हमेशा आयु में कमी निकालनी होती है। वो उसके पास नहीं आना चाहती तो क्या जबरदस्ती है? क्या तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करोगे रुद्र, जय जी ने उसे डांटते हुए कहा। मैंने आरव को इस तरह आयु को लिफ्ट के अंदर ले जाने के लिए नहीं कहा था। दूसरा, वो कुछ कह रहा था तो आयु को भी पेशेंसली सुन लेना चाहिए था। वो क्या उम्मीद कर रही थी कि वो पिछले 6 महीने से उससे दूर है तो वो कब तक उससे बात करने के लिए वेट करेगा? अजीब बात है, आप अब भी आरव का साथ दे रहे हैं। कई बार मुझे लगता है कि अनु बिल्कुल ठीक कहती है, आपको आयु से प्यार ही नहीं है, रुद्र ने सख्त आवाज में कहा और वहां से सिक्योरिटी सिस्टम के पास चला गया था। अयान की नजरें लिफ्ट पर टिकी हुई थीं, जो दोबारा नीचे से ऊपर जाकर आ चुकी थीं। उसने मन ही मन कहा, पिछले 15 मिनट से ये लिफ्ट ऐसे ही घूम रही है और भाई ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? वो आयु को मनाने के बजाय उसे और नाराज़ करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। उससे भी बढ़कर क्या वो भूल गए हैं कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है? लिफ्ट जैसी छोटी जगह पर वो आसानी से ट्रिगर हो जाएंगे। लगता है अब मुझे दादी को हेल्प के लिए बुलाना ही होगा। अयान तुरंत वहां से हटा और मीटिंग रूम में वापस आ गया था। उस जगह पर कोई नहीं था। उसने तुरंत गौरवी जी को कॉल किया और कहा, दादी आप तुरंत डिजायर्स पहुंचाइए, फिर हम साथ मिलकर एक अच्छे से लॉयर के पास चलेंगे।
ये तुम क्या बोल रहे हो? लॉयर की जरूरत क्यों पड़ने लगी? गौरवी जी ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। क्योंकि आपके पोते की हरकतें ही ऐसी हैं जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि आयु उसके साथ रुकने वाली है। उन्होंने खुद को आयु के साथ लिफ्ट में बंद कर लिया है। इस हरकत के बाद मुझे नहीं लगता कि आयु उन्हें माफ करने वाली है। बाकी हो सके तो साथ में डॉक्टर भी लेकर आइएगा, अयान ने तंज भरे लहजे में कहा और कॉल कट कर दिया था। उसे सच में इस वक्त आरफ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं लिफ्ट के अंदर आरफ की खराब होती हालत को देखकर आयु घबरा गई थी। वो जल्दी से उसके पास बैठी और उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ है तुम्हें और तुम इस तरह रेस्टलेस क्यों हो रहे हो? हाँ वो सांस नहीं आ, आरव अटकती आवाज में बोलने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम क्लॉस्ट्रोफोबिक हो? आयु ने उसे घूरते हुए पूछा, जिस पर आरव ने हाँ में सिर हिला दिया था। तो क्या जरूरत थी इस तरह लिफ्ट में आकर उल्टे सीधे बटन दबाने की? मन तो कर रहा है कि तुम्हें इसी हालत में ऐसे ही छोड़कर बाहर भाग जाऊं, आयु ने चिढ़कर कहा। उसे आरव पर गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो जोर से चिल्लाए, पर आरव की खराब होती हालत देखकर वो चुप थी। इस बीच उसे पुरानी बातें याद आईं, जब आरव बहुत कम मौकों पर लिफ्ट लेता था और ज्यादातर सीढ़ियां चढ़कर ही ऊपर आता था। उसने गहरी सांस ली और आरव की तरफ देखा, जो थोड़ी ही देर में सांस लेने के लिए इस तरह संघर्ष कर रहा था जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। देखो आरव, अब मैं जो करने जा रही हूँ वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रही हूँ, तो उसका कोई दूसरा मतलब मत निकालना और दुआ करना कि तब तक कोई बाहर से लिफ्ट रुकवा दे, आयु ने शांत लहजे में कहा, जबकि आरव अच्छे से जानता था कि आयु क्या करने का सोच रही है।
आरव ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और आयु से दूर खिसकने की कोशिश की, लेकिन आयु ने उसके मुंह को पकड़ा और गहरी सांस लेकर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया था। वो धीरे धीरे उसकी पीठ को सहला रही थी। इस बीच लिफ्ट का दरवाजा खुला और सब लोग वहां आगे खड़े हुए थे। दरवाजा खुलते ही जब उन्होंने आरव और आयु को इस तरह पास देखा तो एक पल के लिए उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। जय जी ने जब हल्का सा खांसा तो आयु जल्दी से आरव से अलग हो गई थी। वो आरव को सहारा देकर बाहर लाने लगी। आरव को तुरंत ऑफिस में बने कॉमन रूम में ले जाया गया। आयु उसके साथ ही थी। कुछ ही देर में गौरवी जी डॉक्टर के साथ वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने एक नज़र आयु की तरफ देखा और फिर आरव को, जो अब थोड़ा बेहतर जरूर महसूस कर रहा था, पर हाँ, उसका चेहरा अभी भी लाल था। क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम नॉर्मल लिफ्ट में 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, जबकि मुझे पता चल रहा है कि तुम 15-20 मिनट लिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे। अगर तुम्हारा मरने का इतना ही मन कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं इसको और आसान बना देती हूँ, गौरवी जी उस पर चिल्लाकर बोली। आरव हैरानी से आंखें बड़ी करके उनकी तरफ देख रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब गौरवी जी उस पर इतना गुस्सा कर रही थी। आरव ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी आयु ने उसे धक्का देकर फिर से लिटा दिया था। वो उसे वार्निंग फिंगर दिखाते हुए बोली, जब तुम्हें पता है कि ना तुम ठीक से उठ सकते हो ना ही बोल सकते हो, तुम पड़े क्यों नहीं रह सकते? उसे डांटने के बाद आयु ने गौरवी की तरफ देखा और कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ दादी, और यकीन मानिए मेरा उस लिफ्ट के अंदर पूरा मन किया था कि मैं इस आदमी का गला दबाकर इसकी जान ले लूँ। तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? गौरवी जी जल्दी से बोली। बस कीजिए आप दोनों, आप मेरे सामने मुझे ही मारने की बातें कर रही हैं, आपको मेरा हालचाल पूछना चाहिए। आरव को बीच में दखल देना ही पड़ा, क्योंकि उन दोनों की बातें सुनकर उसे झटका सा लग रहा था। गौरवी जी और आयु ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत अपनी नज़रें मोड़ दी थीं। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे इससे बात करनी थी इसीलिए मैंने ऐसा किया, और ये मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। अगली बार भी मुझे खुद की जान खतरे में डालकर इससे बात करनी पड़ी तो मैं करूँगा। अगली बार मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करूँगी, आयु ने झुंझलाकर जवाब दिया। गौरवी जी ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर शांत लहजे में बोली, मुझे लगता है तुम दोनों को बात करनी चाहिए। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन आरव ने उनका हाथ रोक लिया था। वो अच्छे से जानता था कि ऐसे में अगर उन्होंने आयु के साथ उसे अकेला छोड़ा तो वो उस पर और गुस्सा करने वाली है। अब तुम्हें क्यों डर लग रहा है? जो भी किया है उसे फेस करो, गौरवी जी ने उसका हाथ झटक कर कहा और वहां से चली गई थी। उन्होंने कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया था। गौरवी जी के जाते ही आयु ने आरव की तरफ घूर कर देखा तो आरव ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता, बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें बात करने का, तो अब मेरी सारी बातें सुननी भी होंगी, आयु ने दांत भींचते हुए कहा, तो आरव ने जल्दी से अपने दोनों कानों को बंद कर लिया था। ठीक है, तुम्हें नहीं करनी ना मुझसे बात, तो मैं जा रही हूँ, आयु ने बुझी हुई आवाज़ में कहा। वो वहां से जाने लगी तभी आरव उठकर अचानक उसके सामने आ गया था। आयु आरव से खुद बात करने के लिए मान गई थी और इस वक्त उसके चेहरे पर किसी तरह के गुस्से के भाव भी नहीं थे। आरव को यही लग रहा था कि उसकी खराब तबीयत देखकर शायद आयु का दिल पिघल गया होगा और ऐसे मौके पर वो उसे मना सकता था। ठीक है, करते हैं बात, आरव ने आयु की आंखों में देखते हुए कहा। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है, आयु मान जाएगी या फिर आरव को उसका गुस्सा और नाराजगी सहना अभी बाकी है? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।